हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवत गीता, चैप्टर 2, टेक्स्ट नंबर 47। कृपया इन अत्यधिक पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ दोहराने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्वकर्मणि। शब्दों का अर्थ देखिए। कर्मणि यानी कर्म करने में एव निश्चय ही अधिकार, आपका अधिकार है। भगवान कहते हैं आपका अधिकार केवल कर्म करने में है। और आगे ते यानी तुम्हारा और मा यानी कभी नहीं, फलेषु फलों में कदाचन, भगवान कहते हैं कदापि आपके आपका फलों में कदापि अधिकार नहीं है, खाली कर्म करने में है। आगे भगवान कहते हैं मां कर्म फल हेतुर्भु यानी मां मन कभी नहीं, कर्म फल यानी कर्म फल हेतुर यानी कारण भू मन हो, कर्मों के फलों का कभी भी कारण मत बनो। और आगे भगवान बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, माते संगोस्त्व कर्मणि मा मन कभी नहीं ते मन तुम्हारी संग आसक्ति अस्तु हो अकर्मणि यानी कर्म ना करने में। अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं तुम्हें अपना कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों में तुम अधिकारी नहीं हो। कर्म का जो फल है उसके आप अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। बहुत ही सुंदर और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। इस अद्भुत श्लोक को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं स साग्रजातम् सह कर्णरघुनाथ वितन्तं सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सह कर्णललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तु ते तप्त कांचनम गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये वंचाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद्भगवद्गीता माते की जय हो। भगवान इस द्वितीय अध्याय जिसको गीता का सार कहा जाता है उसमें अर्जुन को बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज दे रहे हैं। भगवान ने पहले तो अर्जुन को ये बता दिया कि देखो अर्जुन तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना है, क्योंकि किसी की मृत्यु के भय से आप अपना कर्तव्य कैसे छोड़ सकते हो, क्योंकि मृत्यु तो सिर्फ इस शरीर की होती है। वास्तव में आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और आत्मा को तो न शस्त्र काट सकता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम खेदयन्त्वा, तो न शोषयति मारुतः, न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल उसको गला सकता है। और आत्मा के विषय में बताने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने भगवान अर्जुन को बोला कि देखो मैंने तुम्हें अब तक सांख्य योग बताया है, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग बताता हूँ। श्लोक नंबर 39 में भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि योग अर्थात भगवान के साथ अपना योग जोड़ के जिस तरह कर्म करते ना उसके विषय में बताया, और भगवान ने कहा बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि तुम अगर इस बुद्धि योग में रहकर कार्य करोगे तो कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। इजी हो जाएगा मनुष्य का जीना यदि वो कर्म बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि कर्म बंधन का कैसे सिलसिला है। देखिए जब देखा आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम टेप रिकॉर्डर चलाते हैं उसमें जो टेप की जो होती है ना कैसेट, वो जब हम डालते हैं ना उसके अंदर क्या होता है, एक साइड से रोल फोल्ड अप हो रहा होता है और एक साइड से रिड्यूस हो रहा होता है ना, यानी एक साइड से ज्यादा हो रहा होता है एक साइड से कम हो रहा होता है। अब इसी तरह से जब हम लोग कर्म कोई भी कर्म करते हैं तो एक साइड से क्या होता है, वो कर्म कर रहे होते हैं जो कर्म हम लोगों ने पहले कर लिए हैं उसका रिजल्ट दे रहे होते हैं, उसके अनुसार कार्य कर रहे, और दूसरी तरफ से क्या होता है हमारे कर्म बन रहे होते हैं जिसका हमें आगे जाके रिजल्ट भोगना है और रिजल्ट देना है। तो इस तरह से क्या होगा, ये तो चक्कर खत्म ही नहीं होगा, उधर से कर्म करते जाएंगे उधर से बढ़ता जाएगा बैलेंस, और फिर वापस से उल्टी सीढ़ी कैसे डालेंगे तो उधर से कर्म, इस तरह से तो ये बारंबार जन्म मृत्यु का चक्कर कभी खत्म ही नहीं होगा। Because he is increasing the cycle of birth and death, and he is increasing future reactions, है ना? उसके फ्यूचर रिएक्शंस उसको मिलते जाएंगे। लेकिन यदि आप भक्ति योग में रहकर कृष्ण भावनामृत में रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हो तो उसका पहला रिएक्शन क्या निकलता है, कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म के जो बंधन होते हैं उनसे जीव मुक्त हो जाता है। और उसके बाद और उसका दूसरा रिजल्ट क्या निकलता है भगवान बताते श्लोक नंबर 40 में, नेहा विक्रमनाशोस्ति स्वल्प वायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य अत्रायते महतो भयात्। कि ये कार्य करने से आपका कभी भी लॉस होने वाला नहीं है। आप चाहे उस मार्ग के मतलब मंजिल तक पहुंचते हो या नहीं पहुंचते हो, इसकी भी फिक्र नहीं करो। आप खाली उस रास्ते पर चलने से स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, इस धर्म के रास्ते पर, भक्ति योग के रास्ते पर, कृष्ण भावनामृत के रास्ते पर यदि आप थोड़ी सी भी प्रगति करते हो तो महाभय से आपका छुटकारा हो जाता। त्रायते महतो भयात, बहुत खतरनाक भय से आपका आपकी मुक्ति हो जाती है। और सबसे बड़ा खतरनाक भय क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं मृत्यु का भय खतरनाक होता है, लेकिन बताएं मृत्यु का भय तो कैसे खतरनाक है? वो तो दिखाई देता है ना कि भाई इसके सबकी मृत्यु होती है तो एक दिन मेरी भी होगी, इसमें क्या अब क्या भय करना होने वाली। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक भय बारंबार जन्म लेने का है। मृत्यु से ज्यादा खतरनाक तो जन्म लेना है कि इस दफा तो मैं मनुष्य बन गया, आज तो मनुष्य की तरह मैं जी रहा हूँ, घर मिला है, गुरु मिला है, कृष्ण मिला है, शास्त्र मिले हैं और अच्छा से अच्छी तरीके से जी सकता हूँ। लेकिन कल यदि मृत्यु के बाद मुझे कुत्ता बना दिया गया, मच्छर बना दिया गया, खटमल बना दिया गया, गटर का कीड़ा बना दिया गया तो क्या होगा? तो सबसे ज्यादा अक्लमंद यदि है कोई और यदि वाकई में शास्त्रों पर श्रद्धा रखता है तो सबसे ज्यादा खतरनाक भय क्या होता है? बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने का भय। दोबारा जन्म लेना सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन भगवान कहते हैं यदि आप इस भक्ति योग में कर्म करोगे तो फिर क्या होगा? भगवान ने पहले बता दिया कि कर्म बंधन प्रहासि, कर्म के बंधन से छूट जाओगे और बंधन ही नहीं रहेगा तो फिर दोबारा जन्म क्या होगा? और इस तरह से यानी कि 39 में और 40 श्लोक में भगवान ने भक्ति योग पर चलने के से जो फायदे मिलेंगे वो बताया। उसके बाद 41 में और 45 में भगवान ने क्या बताया कि जो भगवान की भक्ति में एक वन पॉइंटेड व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही हकरू नंदना, कि जो इस तरह से भगवान की भक्ति को वन पॉइंटेड होकर कार्य करते हैं, भगवान के प्रति भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, उनके विषय में बताया। और श्लोक नंबर 45 में क्या बताया? त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणीयो भव अर्जुन, वेदों के विषय में बताते हुए भगवान ने कहा वेदास आर सिंपली डील्स इन थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, है ना, त्रैगुणीय विषया वेदा, तीन गुणों के हिसाब से वेदों में सब कुछ बताया। लेकिन आपको क्या करना है? निस्त्रैगुणीयो भव अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो, आपको शुद्ध सत्व में स्थित होना है। और निर्योग क्षेमम आत्मवान, आपको अपनी सुरक्षा की सारी चिंताएं, अपने लाभ की समस्त चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण लेकर कार्य करना है। तो यहाँ पर आने के बाद यानी श्लोक नंबर 45 सुनने के बाद अर्जुन के मन में ये क्वेश्चन तो रेज हो ही सकता है, अर्जुन आई थिंक हाउ टू टेक अ बिग रिस्क, है ना, कितना बड़ा रिस्क है कि हम वेदों को, है ना, वेदों से आगे निकलना, वेदों को रिजेक्ट करना, बाय द रिजेक्टिंग द थ्री वेदास के, उसको अगर हम तीन वेदों को रिजेक्ट कर देंगे, भगवान ने क्या कहा, इन तीनों वेदों से ऊपर उठो, उनको उनसे आगे बढ़ो, क्योंकि वेदास आर ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, है ना, अगर मैं उनको रिजेक्ट करता हूँ, उनसे आगे निकलने के बारे में सोचता हूँ तो हो सकता है कि कुछ हानि ना हो जाए, मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि वेद में इतना सब लिखा हुआ है, उसके विषय उसके आगे चलने के लिए भगवान कहते हैं त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणीयो भव अर्जुन। और इसके अर्जुन की आशंका को दूर करने के लिए कि कहीं मैं गलती ना कर बैठूं, तो भगवान कहते हैं यू वॉन्ट लूज एनीथिंग, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अगर शुद्ध सत्व में रहकर यानी तीनों गुणों में रहकर कार्य नहीं करोगे, शुद्ध सत्व में रहकर कार्य करोगे तो क्या होगा? भगवान बताते हैं श्लोक नंबर 46 में, यावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्य विजानता, जो छोटे से विषय जो कूप होता है उसके जरिए से जो कार्य हो सकता है, बहुत बड़ा जलाशय तो फौरन से वो कार्य कर लेता है। 41 और 45 में तो भगवान ने ये बताया कि जो भक्ति योग में कर्म करते हैं उनके विषय में उनका एटीट्यूड कैसा होता है, और 42, 43 और 44 में भगवान ने बताया जो भक्ति योग में रहकर कार्य नहीं करते हैं उनका एटीट्यूड कैसा होता है। 42 में भगवान ने कहा यामिमां पुष्पितां वाच्यं प्रवदन्त विपश्चित वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्मानः सर्वगपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। क्योंकि वो भोग और ऐश्वर्य के प्रति बहुत बहुत आसक्त होते हैं, वो अल्पज्ञ होते हैं और वेदों की जो ये यामिमां पुष्पितां वाच्यं जो तीनों वेदों में जो पुष्पितां वाच्य होते हैं ना, जो फ्लावरी वर्ड्स होते हैं, उनकी तरफ बहुत बहुत आकर्षित होते हैं। सो कृष्णा सेज डू नॉट अटैच विद द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ वेदास, क्योंकि इससे क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण 44 में बताते हैं, भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसा। भोग और ऐश्वर्य, भोग कहते हैं एंजॉयमेंट को और ऐश्वर्य बोलते हैं धन दौलत को। धन और दौलत और ऐश्वर्य के प्रति जो बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, तया प्रहृत चेतसा, उनकी चेतना को हर लिया जाता है। भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति, जो आसक्ति है ना, वो चेतना को हर लेती है। तो कुछ बोल सकते हैं कि भोग ही तो है ना, खाली भोग अगर लिखा होगा तो भी वो चेतना को हर लेते हैं, लेकिन धन जो है उसके जरिए जब हम गलत गलत कार्य करते हैं, असल में क्या होता है, जहां पर धन नहीं होता है वहां पर भी भोग होता है ना। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो ये कार्य करते हैं, जो गलत कार्य हैं, जैसे चार प्रिंसिपल्स हैं हमारे, वो तोड़ते हैं, वो धन ज्यादा नहीं होता लेकिन फिर भी करते हैं, कहां पर ज्यादा धन होता है फिर ये सारा कार्य। लेकिन ये धन और ऐश्वर्य और भोग जब मिल जाते हैं फिर तो क्या होता है, उनकी आसक्ति जो है आपकी चेतना को हर लेती है। और भगवान कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधावना विधीयते, और जिनका मन भोग और ऐश्वर्य में लगा रहता है वो कभी भी समाधि में स्थित नहीं हो सकते, यानी कि उनका मन एकत्रित नहीं होता, भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता उनके अंदर। इसीलिए भगवान ने आगे कहा है 45 में कि त्रैगुणीय विषय आवेदन निस्त्रैगुणी बाबा अर्जुन, के तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेदों का वास्तव में मतलब क्या है, देखिए वेद सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने वेद ब्रह्मा जी को बताया, श्रीमद् भागवत महापुराण 1.1.1 में कहा गया तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, प्रथम जी ब्रह्मा जी को उन्होंने बताया, और ब्रह्मा जी ने सारे वेद कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। तीन बार पूरे वेद भगवान श्री कृष्ण ने जो उनको ब्रह्मा जी को बताए थे उनको तीन बार अध्ययन किया पूरे पूरे कंसंट्रेशन के बाद, और उसके बाद उन्होंने वेदों का निचोड़ दिया कि वेदों का उद्देश्य क्या है। द पर्पज ऑफ ऑल वेदास इज टू डिवेलप द अट्रैक्शन टूवर्ड्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, इन सारे वेदों का मकसद क्या है, सुप्रीम पर्सनालिटी भगवान श्री कृष्ण की ओर अपने आकर्षण को निर्माण करना, यही तो जीवन की वास्तविक सिद्धि है कि भगवान की ओर हम अपने आकर्षण को निर्माण करें। तो फिर यही, और यही चीज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तावान सर्वेषु वेदेषु, 46 की नेक्स्ट लाइन देखिए, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानते, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। आंतरिक तात्पर्य क्या है कि हम भगवान से अपने प्रेम को फिर से, प्रेम का जो संबंध है उसको फिर से निर्माण कर सकें। और आज भगवान श्री कृष्ण हमें बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म आपको अपना कार्य करने का अधिकार है, कर्मण्ये एव सिर्फ और सिर्फ अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार किसमें है, कर्मण्य, लेकिन फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मा फलेषु कदाचन, मा मना कभी नहीं, फलेषु फलों में, कदाचन कभी हो ही नहीं सकता। तो कोई ये सोच सकता है कि यदि फलों में मेरा कोई अधिकार ही नहीं है देन वाई शुड आई वर्क, है ना, मैं कार्य करूं क्यों जब मुझे काम में, काम के फल से कुछ, वास्तव में हम जो भी कार्य करते हैं उस क्यों करते हैं, जी फल का ज्ञान ही तो जीव से कर्म करवाता है। यदि फल का ज्ञान ही ना हो, फल की ओर आकर्षण ही ना हो तो कोई कार्य करेगा क्यों। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मां कर्म फल हेतुर्भू, फल आपको कर्म फल की ओर आसक्त भी नहीं होना है, लेकिन माति संगो स्वकर्मणि, आपको कर्म भी करना है, कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं रह सकता। अर्जुन सोच रहा था कि यदि फल में मेरा कोई अधिकार ही नहीं है तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं, फिर बस कर ही नहीं रहा हूं। लेकिन भगवान साफ साफ कहते हैं माति संगो स्वकर्मणि, ना ही कर्म ना करने में आसक्ति रखो। बहुत ही सुंदर श्लोक है, श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर तीन विचारणीय बातें कही गई हैं। यहाँ पर इस श्लोक में तीन चीजें बताई गई हैं, कर्म यानी स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। एक तो कर्म है, दूसरा विकर्म जो मना किया जाता है, और अकर्म यानी निष्काम। कर्म यानी स्वधर्म के कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। जो हमारा स्वधर्म है, जो हमारा कार्य है, जैसा हमारा गुण है, उसके अनुसार हमें आदेश मिलता है और हम कार्य करते हैं। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। अधिकारी कौन है? गुरु, साधु और शास्त्र। यानी कि जब कोई लोग बोलते हैं ना कि भाई हम अपनी मर्जी से कार्य करते हैं क्योंकि मेरा नियत कर्म है, नियत कर्म भी आपको गुरु, साधु और शास्त्र के अनुसार करना होता है कि क्या मेरे इस समय मेरा क्या कर्तव्य है, वो आप नहीं डिसाइड कर सकते। क्योंकि यदि हम शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। कि यदि शास्त्र की विधि के अनुसार कार्य नहीं करोगे तो ना कभी सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा और ना ही परम गति मिलेगी। तो कार्य करने से पहले शास्त्र, कोई लोग बोलेंगे भाई मैंने तो किताब पढ़ी नहीं। भाई किताब क्यों नहीं पढ़ी? तो मनुष्य बने हो, किताब तुम्हारे लिए, शास्त्र तुम्हारे लिए है। तो यहाँ पर साफ साफ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और कर्म का अर्थ है अपने कर्मों को, अकर्म का मतलब, सॉरी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि निष्क्रिय ना हो, यानी ऐसा नहीं है आप अकर्म निष्क्रिय नहीं रह सकते। भगवान ने साफ साफ कहा माते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म ना करने में कभी भी आसक्ति मत रखो। तुम्हारा जो कर्तव्य है उसको पहले जानो कि मेरा इस समय क्या कर्तव्य है और फिर अपना कर्तव्य करो, लेकिन उसके फल की ओर कभी भी आसक्ति मत उत्पन्न करो। अभी तो फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है ना। जो हमारी आसक्ति है वो कर्म का कारण बन जाती है, इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता हो जाता है। फिर क्या, वो आसक्ति हमें उसके फलों का भोक्ता बना देती है। फिर वैसे ही मैंने बताया ना आपको कि जैसे एक साइड से रिड्यूस हो रही है और दूसरी साइड से बढ़ रहा है हमारा कर्म का खाता, और फिर हमें दोबारा जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। तो यहाँ पर आगे श्री पप्पा जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि जहां तक निराधर अब निर्धारित जो कर्म है ना आपके, जो जिसको हम नियत कर्म बोलते हैं, उनके विषय में श्री पप्पा जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है तीन उपश्रेणियों में होते हैं, उनके तीन विभागों में उनको डिवाइड किया गया है नित्य कर्मों को। यथा नित्य कर्म जो हम डेली रूटीन्स के कर्म होते हैं, आपत्कालीन कर्म यानी अचानक से सडन कोई कार्य हमारे ऊपर आ जाए वो क्या इस टाइम पर क्या किया जाए, और तथा इच्छित कर्म यानी सकाम कर्म जिसका फल हम भोगेंगे। आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं नित्य फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्वगुण में रहकर किए जाते हैं। जो भी नित्य कर्म होते हैं ना उस वो बस हम लोग करने होते हैं, जैसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि स्नान करना चाहिए और है ना भगवान को प्रणाम करना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए। मतलब उसमें क्या होता है कि फल की कोई इच्छा नहीं होती है, बस हम करते हैं वो कार्य करना होता है। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ होते हैं। अब हम कोई सकाम कर्म करेंगे जिसके बदले में हमको कोई इच्छा होगी कि हम ये कार्य कर रहे हैं, तो उनको अशुभ कहा जाता है, क्योंकि वो बंधन में डालेंगे ना। अगर अच्छा कार्य भी कर रहे हैं लेकिन यदि वो सकाम कर्म है तो उसकी बदली में हम लोग को वापिस आना पड़ेगा, और जिस कर्म की वजह से हमें दोबारा जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़े वो शुभ नहीं हो सकता, वो अशुभ होता है। भले वो बंधन सोने का हो या लोहे का, लेकिन बंधन तो बंधन है, मुक्ति तो नहीं मिली ना कर्म बंधन से, तो वो अशुभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बता रहे हैं, जैसे भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की ओर आपको कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्त पद की ओर ले जाते हैं। यदि हम सिर्फ ये सोचकर कार्य करें कि मैं कार्य इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कृष्ण ने मुझे ये ड्यूटी प्रिस्क्राइब की है, कृष्ण ने ये मुझे ड्यूटी सौंपी है, मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करूंगा, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता को सेंटर में रखना, तो ये निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पद की ओर हमें ले जाते हैं, क्योंकि कर्म बंधन छूट जाता है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्त रहित होकर कर्म यानी स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। भगवान ने कहा तुमको कर्म की फल की ओर आसक्त नहीं होना है, बस स्वधर्म है, तुम्हें गुरुओं के अनुसार तुम्हारा जो वर्ण है उसके अनुसार तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म है कि वो अधर्म का नाश करने के लिए शस्त्र उठाए, तुम्हारा कर्म है, और उससे क्या तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है। अर्जुन सोच रहा था ना कि मुझे ना अपराध लगेगा, मैं नरक में चला जाऊंगा और सब लोग के ना ये कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर उत्पन्न, ये सब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है ना, तुम अपना कार्य करो, तुम अपना कार्य अनासक्त होकर करो, उसके अंदर फल के अंदर कोई आसक्ति ना रखो। मर गए तो भी ओके, मर जाओगे तो भी स्वर्ग मिलेगा तुमको, क्योंकि युद्ध करते हुए क्षत्रिय यदि मरता है तो वो ऐसा ही है जैसे ब्राह्मण यज्ञ करते हुए मरे, जैसे ब्राह्मण अपना कार्य करते हुए मरता, उसी तरह क्षत्रिय के लिए युद्ध जो है उसका धर्म है, तो यदि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है तो फिर उसको अच्छा लाभ ही मिलने वाला है। और यदि तुम मर गए तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर जीत गए तो भी तुम्हें यहाँ का राज्य मिलेगा, तो तुम ये सोचो ही नहीं कि क्या मिलने वाला है, क्योंकि ये तो तुम्हें फंसाएगा यदि तुम फल की ओर आसक्त होगे तो। मां फलेषु कदाचन, फल की ओर कभी भी आप आसक्ति मत उत्पन्न करो। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं आसक्ति दो तरह की होती है, एक तो ये होती है कि कार्य करो, एक होती है कि कार्य नहीं करो, मजा नहीं आएगा ये कार्य करने में। तो आसक्ति का दूसरा पहलू क्या है कि युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसी आसक्ति से भी मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं हो पाती। श्री प्रभुपाद जी यहाँ सावधान कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं कार्य ना करूं, लेकिन कार्य ना करना भी आसक्ति है, और क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं कार्य करूंगा तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, तो वो भी हमें फंसाएगी, मुक्ति पद की ओर प्राप्ति नहीं कराएगी। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक। देखो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं स्वीकारात्मक मतलब पॉजिटिव, हाँ मैं ये कार्य करूंगा मुझे ये अच्छा लगता है, और निषेधात्मक का मतलब होता है नेगेटिव, यदि इसका मतलब होता है कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आसक्ति चाहे पॉजिटिवली हो, स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक नेगेटिव हो, वह बंधन का कार्य बनेगी। क्योंकि ये बंधन का कारण क्यों बनेगी, क्योंकि उसमें फल की ओर आसक्ति है, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसका ये रिजल्ट आएगा इसलिए नहीं करना है, तो फल जो है वो आपको बांधेगा। अकर्म पापमय है कि मैं कर ही नहीं रहा हूं कुछ भी, कोई काम करना ही नहीं है, वो पापमय है, उससे गुनाह मिलेगा कि तुम्हारा कर्तव्य था तुमने क्यों नहीं किया, तुमको करना चाहिए था। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर टॉपिक स्टार्ट किया है कि आपको कर्म करना है और कर्म के फलों में कोई आसक्ति नहीं रखनी है, केवल कर्म करना है और भगवत भावना में रहकर कार्य करना है। कि भगवान ने कहा कि सारे कर्म के फलों को मेरी ओर मुझे अर्पित कर दो, इस तरह से तुम कर्मों के बंधन में नहीं फंसोगे, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसोगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया, और इसी से जुड़े हुए आगे श्लोक आएंगे, कृपया साथ रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।